ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के अध्याय 7। अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। श्लोक क्रमांक 39। राय कलत्रम पशव सुतादयो गृहा मही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामा शन भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। राया कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कुञ्जर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामाशन भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। राया कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कुञ्जर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामाशन भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। रायः संपत्ति, कलत्रम अपनी पत्नी तथा सखियां, पशवः गायें घोड़े, गधे बिल्ली कुत्ते जैसे पालतू पशु, सुत आदयः पुत्र इत्यादि, गृहाः बड़े बड़े महल तथा आवास, मही भूमि, कुंजर हाथी, कोश खजाना, भूतयः तथा इंद्र तृप्ति एवं भोग विलास की अन्य सामग्रियां, सर्वहे सभी अर्थ आर्थिक विकास, कामः तथा इंद्रिय तृप्ति, क्षणभंगुर क्षण भर में विनाशशील, आयुषः आयु वाले का, कुर्वन्ति करते हैं या लाते हैं, मर्त्यस्य मरने वाले का, कियत् कितना, प्रियम आनंद, चलाहा क्षणिक या चलायमान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री वाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गायें हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना आर्थिक संपन्नता तथा इंद्र तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षणभंगुर एवं नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थाई है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि आर्थिक विकास का दम भरने वाले किस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा निराश हो जाते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में पूछा गया है कि विषयो पपादने, तथा कथित आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ क्या है। विश्व इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक सभ्यता के विकास द्वारा शारीरिक सुविधा के लिए आर्थिक विकास करने के प्रयत्नों से जन्म मृत्यु जरा तथा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया है। हरेक को विश्व इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्यों यथा रोम, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्यों का ज्ञान है, किंतु ऐसे आर्थिक विकास में लगे रहने वाले यह सारे समाज बारंबार होने वाले युद्धों, बीमारियों, दुर्भिक्षों इत्यादियों के माध्यम से प्रकृति के नियमों द्वारा ध्वस्त होते रहते हैं। इस तरह उनके सारे प्रयास क्षणभंगुर तथा अस्थाई हैं। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। भले ही कोई अपने विशाल साम्राज्य होने का कितना ही गर्व क्यों ना करे, लेकिन यह साम्राज्य अस्थाई होते हैं। 100 या 200 वर्षों के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे सारे आर्थिक विकास यद्यपि अत्यंत कठिनाई तथा प्रयत्न से संपन्न होते हैं, किंतु तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें चलाहा कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास तनिक भी सुखकर नहीं होता। भगवत गीता में संपूर्ण जगत को दुख आलयम अशाश्वतम अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। आर्थिक विकास भले ही कुछ काल तक सुखकर लगे, किंतु बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। इस प्रकार अनेक बड़े बड़े उद्योगपति अब अत्यंत संतप्त हैं, क्योंकि लूटने वाली विभिन्न सरकारें उन्हें तंग करती हैं। निष्कर्ष यह है कि तथाकथित आर्थिक विकास के लिए अपना स्वयं क्यों व्यर्थ किया जाए, जो ना तो स्थायी है ना ही आत्मा के लिए सुखकर है। दूसरी ओर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती हैं, और ऐसा स्थायी प्रेम जो दास, सखा, माता पिता या प्रेमी के रूप में ही हो सकता है, सरलता से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस युग के लिए विशेष छूट है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण कीर्तन करके ईश्वर के साथ अपने मूलभूत संबंध को फिर से जीवित कर सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और इस तरह वह इतना सुखी हो जाता है कि उसे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। कृष्ण भावनामृत में प्रगत भक्त धन, अनुयायी, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहता। रायः कलत्रं पशवः सुत आदयो ग्रहा मही कुंजर कोशभूतयः। भौतिक ईश्वरों के स्वामित्व से उत्पन्न तृप्ति शूकरों कुकरों के जीवन में भी देखी जाती है। भले ही वे दूसरे स्तर की हो, किंतु वे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य जन्म में जीवन में कृष्ण के साथ हमारे सुप्त शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर पाना संभव है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इस जीवन को अर्थधम कहा है। फलस्वरूप यदि हम अपना जीवन आर्थिक विकास में व्यर्थ ना बिताकर कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने में लगाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हिजोरनेस भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज जी के चरण कमलों में याचना करता हूँ, आशीर्वाद की याचना करता हूँ, ताकि इस बड़े सुंदर प्रसंग पर हम कुछ चर्चा कर सकें। और साथ ही साथ सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, ताकि हम आज यहाँ पर कुछ श्रीमद् भागवतम के सुंदर अध्याय के सुंदर श्लोक पर चर्चा कर सकें। हालांकि यहाँ मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ के मंदिर के बारे में और उनके भक्तों के बारे में बहुत सुना था, तो हमारी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि जब भी हम कभी नेक्स्ट टाइम दिल्ली जाएं तो अवश्य यहाँ पर आके मंदिर का दर्शन करें और भक्तों से मिलें। तो ये हमारा जो है प्रमुख कारण है यहाँ आने का, खासकर रुक्मिणी कृष्ण को और सब भक्तों को मिलने का। बाकी हमारी योग्यता ना होते भी यहाँ उन्होंने अनुरोध कर, यहाँ पर हम थोड़ा प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम के इस सुंदर अध्याय पर, कुछ इस श्लोक पर चर्चा करने के लिए। तो कुछ त्रुटियां हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करिए, भाषा या कुछ अनेक। राह्य कलत्रम पशु सुतादयो गृहामही कुंजर कोशभूतयो सर्वैर्त कामाशन भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। अनुवाद एक बार फिर। मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गायें, हाथी तथा घोड़े। आजकल हाथी घोड़े तो घर पे नहीं है, गायें भी नहीं है, मैं कहने का मतलब गाड़ियां, गाड़ी मोटर बाइक या मर्सिडीज जो भी अलग अलग लोगों के पास हैं, उनका खजाना अर्थात बैंक बैलेंस, आजकल जो भी अकाउंट हैं सबके अलग अलग प्रकार के, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्र तृप्ति, यहाँ तक कि उनकी उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षणभंगुर एवं नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थाई है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने शाश्वत जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज इस सुंदर प्रसंग में अपने मित्रों को समझा रहे हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वास्तविक उद्देश्य। और बड़ा विशेष बात है कि प्रहलाद महाराज ने, जिसे इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, तो ये सब ज्ञान उन्होंने श्रीपद नारद मुनि से अपनी माँ के गर्भ में प्राप्त किया था। तो कई बार हम लोग विचार करते हैं कि भाई अभी तो हम जवान हैं, अभी इस ज्ञान की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है या कैसे हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में थे जब ये उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बड़ा विशेष ये जो सुंदर श्लोकों में, आगे के कुछ श्लोकों में भी जो प्रहलाद महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, वास्तव में किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, क्या जीवन का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए, उसको यहाँ पर वह स्थापित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का ये बड़ा ही सुंदर जो है यानी अध्याय है, जहाँ पर बड़ी फोर्सफुली प्रहलाद महाराज बतला रहे हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये मनुष्य की जो धन संपत्तियां, सुंदर स्त्रियां, गाड़ियां, बंगले, अनेक चीजें जहाँ जो इस श्लोक में वे वर्णन कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के ये सब भोग जो हैं वह केवल क्षण भंगुर है, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। तो इस बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य है, जिसे हमें अपने जीवन में, हमने बहुत बार सुना है कि ये सब क्षण भंगुर है, सब चले जाएंगे, लेकिन इसे अपने बारंबार सुन के इसे हमें अपने जीवन में उतारना है, अपनी जीवन शैली को इसके आधार पर जीवित करना है या जीना है, तब हम ये करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि विभिन्न लोग अनेकों प्रयास कर रहे हैं आर्थिक विकास करने का, अनेक अनेक प्लानिंग कमीशन बिठाए जाते हैं, अनेक अनेक विचार किए जाते हैं। जय श्री राधा रुक्मिणी कृष्ण भगवान, राधा राधिका कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। किस प्रकार से अनेकों अनेक प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से आर्थिक विकास के माध्यम से अपने जीवन को हम सुखमय बना सकें, आनंदमय बना सकें, और पूरा एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां सबका एकमात्र उद्देश्य यही दिया गया कि आप यह प्राप्त कर लीजिए, आप आनंदमय हो जाएंगे, आप ये गाड़ी आपके पास हो जाएगी तो शायद आप खुश हो जाएंगे, इस घर में चले जाएंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, यह चीज आप प्राप्त कर ले जाएंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद इस सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम कितने भी प्रयास कर लें आर्थिक विकास के, लेकिन इसका अंत आने ही है, ये क्षण भंगुर है। आज है कोई भी चीज आप ले लीजिए, जहां पर जो इसकी जिसमें जो चर्चा की गई है, या आप धन की बात कर लीजिए या संपदा, आज कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, या तो हम देखते हैं इस जीवन में ही कई बार वह उसका सब धन छिन जाता है, कभी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाता है, या कभी आग लग जाती है, या कभी कोई ना कोई कारणवश वह धन व्यक्ति के पास आज है तो कल नहीं, या फिर अगर धन नहीं जाता है तो व्यक्ति स्वयं चला जाता है। क्या लेकर जाए, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। व्यक्ति इस जगत में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। इस जीवन भर प्रयास करता रहेगा एक्युमुलेट करने का, यह भी प्राप्त कर लूं, और धन अधिक धन अधिक धन प्राप्त कर लूं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तथा श्रील प्रभुपाद इस सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि यह क्षण भंगुर है। आज आपके पास है धन और कल यही धन किसी और के पास रहेगा, और किसी के पास नहीं तो आपकी मृत्यु के पश्चात तो आपको इसे छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि सब पुत्र, जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है, पुत्र सुंदर स्त्रियां सखियां जो हैं, वह सब भी केवल धन के पीछे, पुत्र भी विचार करता है कि कब तक पिताश्री मरेंगे और सब धन संपत्ति हमारे हवाले आ जाएगी, हमारे नाम पर हो जाएगी। तो इस जगत का जो है आजकल है नियम है। श्री प्रभुपाद आगे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े साम्राज्यों की ही बात क्यों ना कर लीजिए, रोम साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ये अनेक साम्राज्य थे। एक समय था जब पूरा साम्राज्य था ब्रिटेन का। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था कि एक जगह अस्त होता था और दूसरी जगह से वहां जो है सूर्य उदय हो जाता था, इतना बड़ा। लेकिन आज हम जानते हैं कहां है ब्रिटिश साम्राज्य, चला गया। अलेक्जेंडर, नेपोलियन, इतने बड़े बड़े महारथी महाराजा हुए, लेकिन आज कहाँ है वो, समय के भाव में सब बह गए। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, समय काल का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, अनेकों लोगों ने प्रयास किया है समय को धोखा देने के लिए, लेकिन समय को कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई बच नहीं सकता समय से। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि हम किस प्रकार से मृत्यु से बचना चाहते हैं तो क्या करें, अभी शरीर पर पूरा सोच रहे हैं कि हम मलिन बन जाते हैं, पूरा दुष्ट अपने आप पर क्या बोलते हैं मल मूत्र सबसे अपने आप को लिप्त कर लिया कि अगर जो यमदूत लोग आएंगे तो घबरा जाएंगे और हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन यमदूत भगवान को कौन धोखा दे सकता है, इज द ग्रेटेस्ट चीटर, भगवान सर्व जो है चीट करने वालों के भी जो है जो जिनको हराने वालों को भी हरा देते हैं भगवान। तो आए और शुकर को भेज दिया, स्वर को भेज दिया जो उनको चाटता है, और फिर यमदूत आके उनके शरीर से आत्मा को लेके चले जाते हैं। कहने का भाव है कि हम किसी भी प्रकार से हम चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन काल के प्रभाव से हम बच नहीं सकते। एक और छोटी कहानी मतलब ऐसा हमने सुना है, मालूम नहीं ये सत्य है कि नहीं, बट ऐसा सुनने में आया है और बड़ा, लेकिन हम इससे सीख सकते हैं। जो टाइटैनिक, जो सबने सुना होगा टाइटैनिक शिप, जिसको कहा जाता था कि ये भगवान भी इसको डुबा नहीं सकते, लेकिन भगवान की लीला देखिए, भगवान की अरेंजमेंट देखिए कि पहले ही उसके वो उसमें जहाज में जब उसका चला उसमें वह डूब गया। तो ऐसा गर्व था कि उसे कोई डुबा नहीं पाएगा। तो एक ऐसे व्यक्ति थे उसमें जो वह बच गए, कुछ लोग बच गए थे कि कुछ लाइफ बोट्स थी उसमें, तो उसमें एक व्यक्ति थे वो भी बच गए, तो बड़े आनंद में थे। पहले तो वृद्ध और स्त्रियों को बचाया गया, लेकिन कुछ व्यक्ति भी उसमें बच गए, वो बड़े आनंद में थे, हम तो बच गए, भगवान तो नहीं मानते थे, लेकिन बच गए और उसमें आनंद थे, पार्टी कर रहे हैं बड़े आनंद में और पार्टी मना रहे थे। एक बार कुछ समय के पश्चात, और एक सूप बाउल होते हैं ना, उसमें सूप पी रहे थे, गरम गरम सूप का आनंद लिया जा रहा था, लेकिन उनको कुछ सर्दी हो गई थी तो खांसी आया, छींक आया बोलते हैं ना, तो छींक आया और उनका मुख सूप के बाउल के अंदर चला गया। लेकिन वो छींक आने की वजह से और सर्दी की वजह से ये पूरा मसल उनका जकड़ गया था और वह अपना मुख जो है उसके अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और उसमें वह डूब कर मर गए। तो कहने का भाव है कि मारे कृष्ण राखे खे, जो इस समुद्र में डूबने से बच सकता है, लेकिन अगर भगवान चाहे तो एक सूप का बाउल काफी है मरने के, मृत्यु के। तो कहने का भाव है हम कितने भी प्रयास कर लें, जैसे श्री प्रभुपाद बचा रहे हैं यहाँ पर, अनेक साम्राज्य हुए, अनेक महारथी महाराजा हुए, प्रयास करते रहे अपने आप को बचाने का शाश्वत काल तक। ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग कि सदियों काल कोई अंत नहीं है हमारा, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन का, ये जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश आजकल एकेडमिक जो ज्ञान है, जो विज्ञान मतलब जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में कॉलेजों में भी, उसमें कोई इस विषय के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता कि मृत्यु के पश्चात होगा क्या, हम कहां जाने वाले हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होने वाला है, मैं कहां जाऊंगा और क्या मुझे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इतनी बड़ी यात्रा में जाने का है, मृत्यु के पश्चात हम कहीं जा रहे हैं दूर, किसी को लेके नहीं जा सकते, लेकिन क्या हमने उसके बारे में कोई तैयारी की है, ऐसा हमें जानना चाहिए। एक व्यक्ति थी, उनकी चार बीवियां थी, अभी आजकल तो नहीं है पर पहले हुआ करती थी, चार बीवियां उनकी अलग अलग बड़ी, एक का नाम था वैष्णवी, बड़ी वैष्णव स्वभाव की थी, एक का नाम था तनिष्क, बड़ी सुंदर, और दूसरी का नाम, तीसरी का नाम ऐश्वर्य, जो सब ऐश्वर्य से संपन्न थी, और चौथी थी जो उनका कुछ नाम था हम भूल गए, पर उनको बड़े स्वजनों से कुछ नाम था उनका, चार पत्नियां थी इस प्रकार से। तो वह सबका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन खासकर विशेषकर जो उनकी तनिष्क जो पत्नी थी उसका बहुत ध्यान करा करते थे, पूरा समय उनके साथ बिताया करते थे। ऐश्वर्य के साथ भी बहुत समय बिताते थे, लेकिन अधिकतम समय तनिष्क के साथ बिताया करते थे, बड़े आनंदमय समय, हमेशा उनके साथ खेलना कूदना जो भी करना सब करना। लेकिन जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, मृत्यु का समय निकट आने लगा, तो अब उनको कुछ समझ में आने लगा कि अभी शायद मेरे पास समय नहीं बचा है, अभी मैं ये भोग नहीं कर पाऊंगा। उन चारों पत्नियों को अपने पास में लेकर आए और पूछने लगे, हे तनिष्क, हे ऐश्वर्य, हे स्वजनी, आप मेरे सब साथ में हैं। वैष्णवी को कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, निग्लेक्ट कर देते थे, पूरी कमजोर हो गई थी, तो वे चर्चा कर रहे थे, उनसे सबसे पूछने लगे, मैं अभी जान मृत्यु मेरी नजदीक आ गई, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप में से कौन मेरी मदद करेगा। मृत्यु के समक्ष सभी असहाय हो जाते, वो भीख मांगने लगे कि आपके आप में से कौन मेरे साथ अभी आएगा। इस प्रकार से जब पूछने लगे तो ऐश्वर्य कहने लगे, जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मैं तो कहीं और चली जाऊंगी। बोले, हो गए, मैंने तुम्हें इतना संभाल के रखा, तुम्हें जो चाहा वो तुम्हें दिया, अभी तुम इस समय जब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी। बोले, हाँ, तुम जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी, चले जाऊंगी, किसी और की हो जाऊंगी। बहुत दुख हुआ। फिर वह दूसरी पत्नी से पूछने लगे, हे तनिष्का, तुम्हारा क्या होगा, तुम मेरे साथ तो आओगी। बोले, जब तक तुम्हारा शरीर जलाया जाएगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा शरीर जलते ही मैं चली जाऊंगी। और तीसरी पत्नी को जब पूछा स्वजनी, वो पूछने लगे कि आप, बोले, मैं तो केवल शमशान तक आऊंगी, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। जब वैष्णवी से पूछा तुम, बोले, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। हालांकि उसका उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। कहने का भाव यह है, तात्पर्य यह है कि ये सब जो हमारे साथ हैं, जो हमें सोचते हैं, ये सब हमारे हैं, मृत्यु के समय हमारे कोई कार्य नहीं आने वाला। तनिष्क अर्थात ये तन, जो शरीर जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, जिसको हम सुंदर दिखाने के लिए, जिसको हम स्वस्थ रखने के लिए इतने प्रयास करते हैं, अनेकों अनेक प्रयास करते हैं, यह केवल हमारे साथ जब मृत्यु का समय आएगा, तो जब उसको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, तब तक हमारे साथ रहेगा। लेकिन मृत्यु के पश्चात यह शरीर हमारे किस कार्य नहीं आने वाला। स्वजनी अर्थात जो हमारे परिवार वाले, जैसे यहाँ पर कहा गया, सुंदर स्त्रियां तथी सखियां जो हैं, जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, वे केवल शमशान घाट तक आएंगे, उसके बाद कोई किसी के साथ नहीं आता, वहां पर आएंगे और उसके बाद हमें अकेले ही जाना। इसलिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो जब मर जाता है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मरने से पहले ही लोग विचार करने लगते हैं, भाई लोग प्रॉपर्टी डिवाइड करने लग जाते हैं पहले ही कि भैया ये पिताश्री जाएंगे और ये अभी हमारा विभाजन कर लिया जाए। तो ऐश्वर्य तो मनुष्य की मृत्यु के साथ तुरंत उसको छोड़ जाता है। तो वैष्णवी जो है, जो जीव आत्मा, जो अच्छे कार्य जो हमने किए हैं, जो पुण्य कार्य किए हैं, जो अच्छे कार्य या भगवान का नाम, जो सत्संग जो हमने किया है, वही केवल हमारे साथ मृत्यु के पश्चात जाने वाला है। सुखदेव गोस्वामी श्री प्रहलाद महाराज सुंदर श्लोक में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने यह जान लिया है कि वह शाश्वत समझ रखा है, उनको ये सब कोई लाभ नहीं दे सकते। राय अर्थात धन, कलत्र, पति, सखियां, गाड़ियां, बंगले, ये सब कोई उसके लाभ नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि वह सब यानी बिल्कुल धिक्कार है या उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कहने का भाव है यहाँ पर कि मृत्यु के पश्चात हमारे शाश्वत जीवन में इनका उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है जितना हमारे का अपना संबंध श्री कृष्ण से, भगवान से स्थापित करने में जो है, जो कि एक शाश्वत संबंध है। ये केवल क्षण भंगुर है। इस भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं वह क्षण भंगुर है। आज है तो कल नहीं, आज हमारी तो कल किसी और की। जैसे वो कहते हैं प्रतिष्ठा नारी सदा कवारी, प्रतिष्ठा के पीछे लोग इतना भागते रहते हैं, आज मेरी को मिल जाए, आज मेरा यश हो जाए, आज मेरा सब यशगान करें, सब मेरा गुणगान करें, धन आए, दौलत आए, ऐश्वर्य सब आए, लेकिन प्रतिष्ठा नारी सदा कवारी, भागती रहती है एक के पीछे दूसरे के पीछे। आज आपके पास है तो कल इसके पास, आज अच्छा शरीर है तो कल नहीं रहेगा, तो सब कुछ छिन जाएगा हमसे। जो भी हम सोचते हैं कि यह मेरे को शक्ति दे रहा है, यह मेरा संरक्षण करेगा, मेरे पुत्र मेरी रक्षा करेंगे, मेरी पत्नी मेरा रक्षा करेगी, मेरा यह शरीर मेरी रक्षा करेगा, मेरी ये बुद्धि मेरी रक्षा करेगी, ये ज्ञान मेरी रक्षा करेगा, यह सब समय के साथ हमसे छीन लिया जाएगा। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक इस ज्ञान को बतला रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग, बड़ा सुंदर। तो ऐसा इस भौतिक जगत का जो है नियम, और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कितने भी आर्थिक प्रयास के प्रयत्नों से जन्म मृत्यु जरा तथा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये 4 चीजें, जैसे हम जानते हैं कि ये 4 चीजें ऐसी समस्याएं हैं जो सबको आती हैं, नहीं तो इस भौतिक जगत में जो कुछ समस्याएं आपके जीवन में हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, जो हमारे जीवन में कुछ समस्याएं वह आपके जीवन में नहीं है, जो भारत में कुछ समस्याएं हैं वो अमेरिका में नहीं है, जैसे अमेरिका में कुछ समस्याएं हैं वो भारत में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रही हैं वो समस्याएं भारत में भी अभी। लेकिन कहने का भाव है कि हर समस्या जो है इस स्पेसिफिक एक स्थान की, एक समय के लिए है, लेकिन यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि ऐसी 4 समस्याएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कितनी भी आयु का हो, कहीं पर भी स्थित हो इस भौतिक जगत में, इन 4 चीजों से बच नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग, ये 4 चीजों से कोई भी हम में से यहां उपस्थित भक्त या कोई भी इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति है वो ये नहीं कह सकता कि जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि, इनके चंगुल से मैं परे हूं। जन्म के समय श्रीमद् भागवतम 3rd स्कंद में सुंदर वर्णन आता है कि किस प्रकार से मनुष्य का जो जन्म होता है, इतना पीड़ादायक वो जन्म होता है। 9 महीने मां के गर्भ में रहना, एक छोटे से कमरे के अंदर मल मूत्र और अनेक पदार्थों, कीटों के बीच में जीवन व्यापन करना, हम ये जन्म के पश्चात भूल जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कष्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब भूल जाते हैं, हमने आज किया कल भूल गए, लेकिन अब तो वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं, एमनीशिया करके बोलते हैं, कोई डॉक्टर होंगे तो वे जान सकते हैं कि जो है जब इतना कष्ट होता है तो उसके समय कुछ वो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं, तो उस समय वह भूल जाता है कि ये हम कष्ट, कई बार होता है ना, कई बार कुछ ऐसा चोट लगती है दिमाग पर या सिर पर या कोई ऐसी भयानक खबर मिलती है तो कई बार याददाश्त चली जाती है, तो पिछला सब भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जन्म के समय में व्यक्ति भूल जाता है कि कितने कष्टों से वह गुजरा है जन्म से, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह कष्ट हमें नहीं हुआ। इसलिए जन्म बहुत ही बड़ी कष्टदायक जो है इवेंट है, लेकिन जन्म होने के पश्चात हम बुलाया जाता है हैप्पी बर्थडे, लेकिन क्या उसके गुजरा है 9 महीने, अगर उसे पूछा जाए, अगर उसे याद रहे तो वह यह स्वीकार नहीं करेगा हैप्पी बर्थडे। और जन्म लेता है मनुष्य जिस जीवन में भी तो उसका स्वागत होता है उसको रुलाकर, और अगर कई बार नहीं रोता है बच्चा तो डॉक्टर लोग चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, कहीं इसकी सांस की नली खुलेगी नहीं, तो उसको थप्पड़ मार के रुलाया जाता है। इस प्रकार से हमारा इस भौतिक जगत में स्वागत किया जाता है। श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान इस संपूर्ण जगत को दुख आलय अशाश्वम अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। दुख आलय अशाश्वतम, तो भगवान जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, मैन्युफैक्चरर जो है, उसने एक स्टैंप लगा दिया है दुख आलय अशाश्वतम। जैसे हम कोई प्रोडक्ट करते हैं तो उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन दिया जाता है उसका, तो वहां पर भगवान बोल रहे हैं दुख आलय अशाश्वतम, जन्म से आरंभ हो गया। अब मृत्यु का भय तो सबको है, कोई भी ये नहीं कह सकते कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है। लोग कितने प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग किस प्रकार से मृत्यु को टाला जा सके, बीमारियों को टाला जा सके, बड़ी वैज्ञानिक प्रगति की गई है, शल्य चिकित्साएं अनेक प्रकार की हो गई है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पर साथ ही साथ बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। एक डॉक्टर हमारे मित्र पुराने में बतला रहे थे कि जब 30 साल पहले जब उन्होंने डॉक्टरी की थी, जब उनका वो क्या बोलते हैं टूर के लिए जाया करते थे उनको गांव में, जब उनकी पोस्टिंग की गई थी, तो वह एक समय ऐसा था कि 30 साल पहले वो 7 गांवों में उनको घूमना पड़ता था एक मरीज को ढूंढने के लिए, एक पेशेंट को ढूंढने के लिए। और आजकल तो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में जाए तो लंबा लाइन लगाता है, वेटिंग पीरियड आता है, बेड में भी आपको वेटिंग में पहले एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है मैं बीमार होने वाला हूँ, ऐसा स्थिति आ गई। खासकर बंबई में तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो कोई गारंटी नहीं कब नंबर आएगा, लंबा लाइन है, 2 महीने 1 महीने के बाद बेड खाली होगा तब आइएगा भाई, अभी बीमार अभी है भैया, बेड जब खाली होगा तब क्या करेंगे हम। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है बीमारी, तो हम कितना भी प्रयास करते रहें बीमारी से मृत्यु से बचने का, लेकिन इससे हम कितनी भी एडवांसमेंट क्यों ना हो जाए रोग का भी नहीं अनिवार्य नहीं कर सकते। रोग मृत्यु जन्म मृत्यु जरा जरा बुढ़ापा, कोई यहां पर ये नहीं कह सकता कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, चाहे कितने भी हम फेस अपलिफ्ट कर लें या सर्जरी कर रहे हैं या रिंकल्स को छुपा लें, लेकिन बुढ़ापा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आएगा ही आएगा, कितने भी हम प्रयास कर लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों ना हो जाए। तो इस प्रकार से हम कितने भी प्रयास कर लें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, चक्रव्यूह से हम निकल नहीं सकते। केवल भगवान से संबंध जब हम स्थापित करते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ इसके श्लोक के इस तात्पर्य में बतला रहे हैं, तभी हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार केवल भगवान से संबंध स्थापित करने के मात्र से हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के इस चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो हम भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे। आज के इस जीवन में तो आजकल इतनी समस्याएं आ रही बढ़ती जा रही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने विभिन्न सर्वे करते रहते हैं प्रयास कर रहे हैं, उनका सर्वे का है कि 3 सेकंड के अंदर, प्रत्येक 3 सेकंड के अंदर एक मृत्यु, एक व्यक्ति अपना सुसाइड कर लेता है। एवरी 3 सेकंड्स देयर इज वन सुसाइड। तभी हमने जब 8 से 9 क्लास किया तो गिन सकते हैं कितने लोगों ने अपना सुसाइड कर लिया। अगर यही व्यक्ति सुसाइड कर लेना तो हमें समझ लेना चाहिए कि कितना कष्ट होगा उसके जीवन में, वह उस शरीर को नहीं झेल पा रहा, तो ये इस जीवन के जो है दुख और कष्ट से हम चाहे कितना भी प्रयास करें। और ये ज्यादातर अधिकतर जो समस्याएं जो आ रही हैं वह सब आधुनिक जो कि अति प्रगतिशील देश हैं उनमें हैं, इस प्रकार से समस्याएं हैं। और दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, दूसरी ओर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हम सब आत्माएं का जो संबंध है भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, जीव का स्वरूप है सत चिद आनंद। आनंद की खोज में हम इसलिए क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान के अंश होने के कारण सत चिद आनंद, सदैव आनंद की, शाश्वत आनंद की हम खोज में है। हम प्रत्येक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है वो कह सकते हैं अपने जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य हमारे ये कि किस प्रकार से हम खुशी प्राप्त कर सकें, आनंद प्राप्त कर सकें जीवन में। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री प्रभु भागवत वर्णन कर रहे हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, सच्चिद आनंद। आनंद हमारा वास्तविक स्वरूप है, ये हमारा वास्तविक जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु ये शाश्वत सुख इस अशाश्वत जगत में नहीं प्राप्त होगा, श्री प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती हैं और ऐसा स्थायी प्रेम जो दास सखा माता पिता या प्रेमी के रूप में हो सकता है सरलता से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हम शाश्वत हैं इसलिए इस क्षणभंगुर सुख हमें कभी नहीं पूर्ण सुख दे सकता। केवल शाश्वत श्री भगवान के साथ संबंध जो है हमें इस सुख से जोड़ सकता है। जैसे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस खासकर इस कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल भगवान के नामों का गान करने के मात्र से हम अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो तब यह जो है राय कलत्र पशु सुत आदि प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, ये अभी हमें संपत्ति कुछ भी नहीं भाएगी। अनेकों उदाहरण है श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य चरितामृत में महान संतों के, महान भक्तों के, जो उन्होंने अपना पुनः संबंध भगवान से स्थापित कर लिया है और वह अपने उदाहरणों के द्वारा दिखलाते हैं कि किस प्रकार से यह सब भा नहीं सकता। जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं वह उनको भा नहीं सकता। जैसे श्री प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी इतना सुखी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, उसे भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। श्री चैतन्य चरितामृत के सुंदर भक्त के उदाहरण से हम यहां पर इस तात्पर्य को समझेंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु की लीला में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए कुछ 500 वर्ष पूर्व श्री नवद्वीप धाम में, वहां अनेकों अनेक सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। वहां पर उस समय एक उनके प्रिय भक्त थे श्रीधर कोलामेज नाम के, बड़े ही सरल सादे भक्त जो कि कोलावेज उनका नाम के नाम से जानते थे, केला बेचने वाले, क्योंकि केला, केले के फल, केले का जो स्टेम होता है उसका सब्जी बनाते हैं बंगाल में अनेक प्रदेशों में। यहाँ दिल्ली में नॉर्थ में तो नहीं देखा था हमने भी पहले, बट उस प्रकार की केले का खम्भ जिसे बोलते हैं वो बेचा करते थे, केले के पत्ते बेचा करते थे या केला बेच दिया करते थे। तो केला बेचने वाला कितना साधारण व्यक्ति होता है, तो वैसे ही श्रीधर कोलावेज का जीवन था, बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। खाली जो भी केला, बड़े विचित्र बिजनेसमैन थे, नहीं तो यूजली जो बिजनेसमैन होता है उसकी मेंटेलिटी रहती है कि कितना मैं अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट कमा सकता हूं। नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं ये मैंने 10 रुपए में खरीद लिया और अधिक से अधिक कितना मूर्ख बना के व्यक्ति को, सामने वाले को मैं इसका कमा सकता हूं, 100 में बिकेगा तो और अच्छा, 200 में बिका तो और भी अच्छा, इस प्रकार से पूर्ण प्रयास करते हैं हम लोग। तो वहां श्रीधर कोलावेज का कैलकुलेशन उल्टा था थोड़ा, वो थोड़ा से कहते हैं ना भगवान के भक्त थोड़ा उल्टा रहते हैं कई बार, जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं। तो वो उनका विचारधारा इस प्रकार से थी, ये मेरा खोला है, ये केले के पत्ते हैं, ये खम्भ है मेरे को जीवन व्यापन करने के लिए, मिनिमम सबसे कम न्यूनतम आवश्यकता कितनी है मान लीजिए 10 रुपए की, तो चलो ठीक है ये इसको 10 रुपए और थोड़ा जो आधा लक्ष्मी वह श्री गंगा जी की पूजा करने में समर्पण करते। तो ये कैलकुलेट करते थे कि इतना मेरा खर्चा और इतना गंगा जी की सेवा के लिए उतना इसका मूल्य है। तो मार्केट में सबसे सस्ता उनका हुआ करता था क्योंकि बाकी सब तो सोच रहे थे कि हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लें। तो श्रीधर कोलावेज जी का हिसाब किताब थोड़ा उल्टा था, भगवान की सेवा करते थे, किस प्रकार से सबको सबसे सस्ता दे दिया जाए, विचित्र बिजनेसमैन, लेकिन अपने जीवन में पूर्ण सुख और आनंद की अनुभूति करते थे। और ऐसी उनकी भक्ति थी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक लीलाएं जब कर रहे थे, तो उसमें एक लीला जो रोज नित्य लीला, उनकी रोज एक लीला हुआ करती थी, श्रीधर के पास जाकर आना और उनके यहाँ से केले के पत्ते खरीदना या फल खरीदना या जो भी उनके पास इत्यादि सामग्री होती थी उसको स्वीकार करना, उसके बारे में चर्चा करना। तो कबीराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि घंटों घंटों भगवान उनके साथ चर्चा किया करते थे, उनको कहा करते थे ये केले के पत्ते आपने कितने में दिए, तो वे एक मूल्य बताते थे, तो भगवान माय पंडित गौर सुंदर उस समय उनसे चर्चा करते थे, अरे ये तो इतना महंगा लगा रहे हो, इसके आधे मूल्य में मुझे दे दीजिए। अभी सबसे सस्ता बेच रहे हैं सबसे कम मूल्य में, लेकिन भगवान उनसे आदान प्रदान कर रहे थे कि सबसे सस्ते में मुझे दे दीजिए, 5 रुपए का है तो बोलेंगे 2.5 रुपए में दे दीजिए, और वह दोनों में आपस में खींचा तो उन्हें होने लगी। श्रीधर कोला भी इसकी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर स्वरूप को देखकर अत्यंत उनसे आकर्षित थे और उनको भी बड़ा आनंद आता था, तो वही बार चर्चा करा करते थे महाप्रभु उनसे कि आप इतना महंगा क्यों लगाते हैं, वो तो कहते थे कि मैं सबसे सस्ता देता हूँ। तो महाप्रभु उनको कहा करते थे कि तुम केला बेच बेच कर इतना धन अर्जन कर लियो कि मैं एक दिन तुम्हारा जो है खजाना सब इस भौतिक सब भक्तों को सबको मैं दिखा दूंगा तुम्हारे इस खजाना को। तो श्रीधर कोला भी करते थे, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करता महाप्रभु निमाए, मेरे पास जो है वो केवल मैं गंगा माई की पूजा के लिए अर्पण कर देता हूँ। तो महाप्रभु कहा करते थे कि मुझे ये आधे मूल्य में क्यों नहीं दे देते, बोले ये तो इसका मूल्य इतना है, मेरे को तो कम से कम इतना मेरे जीवन व्यापन के लिए चाहिए। तो महाप्रभु अनेक अनेक कारणों से उनको चिढ़ाया करते थे कि बोले थे कि देवी की पूजा करने वाले शक्त और देवी के जो उपासक हैं वो इतने धनवान हैं, आपके पास देखिए क्या है ना, तो आपके पास ढंग के कपड़े हैं, कपड़े में भी इतने होल थे कि उसके पास गांठ मारे थे, सिलने के लिए सही धागा भी नहीं था, तो जहां भी फट जाता था वहां गांठ मार दिया करते थे श्रीधर कोला भी कपड़े में अपना। और छत में तो जहां घर था वहां बारिश हुआ करती थी, अंदर भी बारिश हुआ करती थी, घर में भी छतरी लेके बैठना पड़ता, शायद छतरी के लिए भी धन नहीं होगा, तो कहने का मतलब घर के अंदर भी बारिश हुआ करती थी। तो वहां पर बोलते थे क्या तुम्हारी स्थिति है, क्या तुम जीवन व्यापन कर रहे हो। श्रीधर कोला कहा करते थे कि क्या जीवन में क्या है, एक राजा का जीवन हो या पशु या पक्षी का जीवन हो जो घोंसला बनाकर रहता है, और एक राजा का एक बहुत बड़ा महल बनाने रखता है, लेकिन एकमात्र वही चीज वो कर रहे हैं, राजा बहुत 56 पकवान खा लेगा और चिड़िया घोंसले में जो उसको मिल जाएगा या गरीब व्यक्ति जो मिल जाएगा। तो कहा करते थे मैं संतुष्ट हूं जो मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हो रहा है, जो थोड़ा धन लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो रही है, मैं उसमें पूर्णतः संतुष्ट हूँ, श्री हरि का नाम लेकर श्री गंगा माई की सेवा करके मैं पूर्ण आनंद में हूं। महाप्रभु अनेक बार चर्चा करते कहा करते थे कि ये गंगा माई का स्तुत हमारे से हुआ है, तो ये धन जो आप गंगा माई के लिए लगा रहे हो हमें अर्पण कर दीजिए। तो श्रीधर कोला बेच भगवान ने उस समय अपना जो है रूप उनको दिखाया नहीं था, तो है विष्णु विष्णु करके कान में हाथ रख लेते थे श्रीधर कोला बेच की, अरे आप कैसे कह रहे हैं कि गंगा माई आपके उस चरणों से आई है, इस प्रकार से बड़ा झगड़ा करा करते थे। धीरे धीरे फिर महाप्रभु कई बार छीन कर लेके चले जाया करते थे उनसे, लेकिन श्रीधर कोला जी का सौभाग्य देखे कि भगवान महाप्रभु जब भी नवद्वीप में थे रोज जब प्रसाद लेते थे, सची माता उनके लिए कुकिंग करते थे या लक्ष्मी प्रिया या विष्णु प्रिया जो भी भोजन बनाते थे, लेकिन जो प्लेट जिसमें भगवान खाया करते थे वह रोज श्रीधर कोला के घर से आया करता था। इनका सौभाग्य देखिए क्या उनका स्थान है कि भगवान जिसमें भोजन स्वीकार करें वह थाली वो केले का पत्ता रोज श्रीधर के घर से आया करता था। और जिस दिन भगवान ने सन्यास के लिए जिस दिन गए उस दिन भी वह भोपले की जो खीर बनाई वो श्रीधर कोला बेज के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से बड़ा सौभाग्य था श्रीधर कोला बेज का, पूर्ण संतुष्ट थे श्री हरि के नाम लेने में। ऐसा नहीं कि वे बहुत प्रसिद्ध भी थे, जब महाप्रकाश का समय आया जब भगवान महाप्रकाश लीला सप्त प्रहरी या लीला कर रहे थे, सब भक्तों को वरदान दे रहे थे, अपने आप को स्वयं भगवान के रूप में जब अपने भक्तों के समक्ष भगवान ने प्रकट किया, उस समय भी भगवान कहने लगे कि सब भक्तों को कि श्रीधर को लेके आइए, तो सब लोग विचार करने लगे श्रीधर कौन है भाई, श्रीधर को तो हम जानते नहीं, तो भक्तों में भी वो प्रसिद्ध नहीं थे, तो सब चर्चा करने लगे आपस में श्रीधर है कौन, कहां से लेकर आए इसको। तो महाप्रभु कहने लगे उस गांव के कोने में जाइए, वहां पर घर है उसका श्रीधर कोला बेच, वो कोला बेचने वाला है, उसका घर है जहां से जोर जोर से भगवान के नाम कीर्तन की आवाज आ रही होगी, वहीं श्रीधर का घर है, आप उसे तुरंत वहां जाकर लेके आइए। वहां रोज जोर जोर से भगवान का नाम जप करा करते थे, इतना जोर से करते थे कि कई बार जो आस पड़ोस के लोग थे वे बहुत क्रोधित हो जाते थे और कुछ लाके फेंक देते थे उसके घर में कि ये खाओ और चुप रहो, भूखे खुद तो भूखे रहते हो और जोर जोर से हमारी भी नींद रात को चिल्लाकर हमारी भी नींद खराब कर देते। तो ये समस्याएं नेबर्स की उस समय से चली आ रही हैं। तत्पश्चात तो सब भक्तों को जब पढ़ा कि श्रीधर को लेके आना चाहिए, तो सब लोग जाते हैं, भक्त लोग जिधर महाप्रभु ने कहा था उस दिशा में जाते हैं, तो बड़ी जोर जोर से भगवान के नाम के उच्चारण की आवाज आ रही थी। तो तभी सब वहां भक्त गए और उनको उठाए और कहने लगे, श्रीधर, श्री गौरांग सुंदर आपको बुला रहे हैं, आपको दर्शन करना चाहते हैं। जब वह सुने तो वह बहुत भाव विभोर हो गए और वहीं बेहोश हो गए। सब भक्तों ने उनको बड़े प्रेम से उठाया और लेके आए, स्वयं महाप्रभु के समक्ष लेकर आए और उनके महाप्रभु के समक्ष उनको रख दिया और महाप्रभु जोर से चिल्लाने लगे, श्रीधर उठो। तब श्रीधर वहां पर भावपूर्ण आवेश में आ गए और उन्होंने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा और भगवान ने तब उनको स्वयं अपने कृष्ण श्यामल सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया वहां पर। तब भगवान उनका यशगान करते हुए कहने लगे कि आप हमारे नित्य पार्षद हैं, हमारे अनेकों जन्मों से आप हमारे भक्त हैं, कृपया हमारा स्तुति करिए। तो श्रीधर गरीब व्यक्ति वह कहने लगा, मैं तो ना अनपढ़ हूं, गवार हूं, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान कहने लगे, लेकिन तुम हमारी स्तुति करो, तुम्हारे मुख से जो भी निकलेगा हमें बहुत प्रसन्न होगा। तो सरस्वती देवी स्वयं श्रीधर जी के जिह्वा पर स्थित होकर बड़ी सुंदर चैतन्य भागवत में वर्णन आते हैं कि भगवान का यशगान करते हैं, उनकी स्तुति से सुनकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान श्रीधर को कहने लगते हैं, जो कि आज के इस श्लोक का जो तथ्य है वो भी स्पष्ट हो रहा है। श्रीधर को लावे से भगवान कहने लगते हैं कि मांगिए श्रीधर, आपको क्या चाहिए, मैं हम आपको कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। तो श्रीधर कहता है, मुझे कुछ नहीं आवश्यकता है भगवान, मुझे और कुछ आवश्यकता नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड, जो भी मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूँ, भगवान का नाम श्री गंगा माई की सेवा के माध्यम से। तो भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ, बड़ा राजमहल दे सकता हूँ, तुम छोटी सी कुटिया में रह रहे हो, एक बड़ा राजमहल दे सकता हूँ। श्रीधर कहते हैं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें इंद्र का राज्य दे सकता हूँ, इंद्र बना सकता हूँ। श्रीधर कहते हैं, आवश्यकता नहीं है भगवान, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि दे सकता हूँ, प्राप्ति, महिमा, अनिमा, लघिमा, सब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, सब योग सिद्धियों के तुम स्वामी बन सकते हो, मैं स्वयं स्वामी, ये सब सिद्धियां तुम्हें प्राप्त दे सकता हूं। लेकिन श्रीधर कहते हैं, भगवान मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, आप कृपया शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान वहां विचलित हो रहे थे कि ये कुछ मांग क्यों नहीं रहा है, और मैं तुम्हें वैकुंठ में स्थान दे सकता हूं, श्रीधर मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ मेरे लिए कुछ मांगो। ये भक्त की स्थिति है, नहीं तो हम सबकी स्थिति ऐसी रहती है कि भगवान के पास जाकर हम मांगते रहते हैं, भगवान हमें ये दे दीजिए, हमें गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, पास करा दीजिए, अलग अलग हम हमारी याचनाएं लेकर हम भगवान के पास जाते रहते हैं। और यहाँ भगवान श्रीधर को कह रहे हैं, श्रीधर कुछ तो मांगो। भगवान चिल्ला रहे हैं, विचलित हो रहे हैं कि भैया ये कुछ मांग क्यों नहीं रहा। तो ये एक वास्तविक भक्त की स्थिति है, जो श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब उस सुख में वह स्थित हो जाता है, भक्ति के सुख में वह स्थित हो जाता है, तो इस यह जो राय करत्र पशु हसुत आदि से वह परे चला जाता है, कुछ आवश्यकताएं नहीं रहती, वह पूर्ण संतुष्ट है। भगवान बोल रहे हैं, फिर भी कुछ तो मांगो श्रीधर। तब श्रीधर कहते हैं कि भगवान, वह जो सुंदर निमाय पंडित का रूप जो मेरे साथ आकर झगड़ा किया करता, याचना कर सकता था, उनके चरणार विंद मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आश्रय हो और मैं उनको सदैव प्रसन्न कर सकूं, यही एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य हो। तो सब भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं और जोर जोर से प्रेम ध्वनि करने लगते हैं, जाए जाए जाए। इस प्रकार से इस प्रसंग के माध्यम से भी जो श्री प्रभुपाद और श्रीपाद प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बतला रहे हैं कि कौन समझदार व्यक्ति इन वस्तुओं को लाभ प्राप्त कर सकता है, धन संपदा, सुंदर स्त्री, सिखिया, पुत्र, घर, पालतू पशु अर्थात गाड़ियां वगैरह, विभिन्न प्रकार की या खजाना या बैंक बैलेंस या आर्थिक, इन सब से कौन वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक सुख केवल भगवत भक्ति में ही है। इन भक्तों के उदाहरणों से और श्रीमद् भागवत के अन्य प्रसंगों के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि वास्तविक सुख की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होंगे। इस भौतिक जगत का जो है डिजाइन ही इस प्रकार से है कुछ, केवल जब हम अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम दुखी रहते हैं, और जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम सुख की हम अनुभूति करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ आज इस भागवत कथा को विराम देना चाहेंगे। कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो तो महाराज श्री से महाराज यू कैन करेक्ट मी और कमेंट इफ समथिंग इज रॉन्ग स्पोकन। एंड आई रिक्वेस्ट अदर डिवोटीज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु एंड अदर्स ऑल्सो टू क्लैरिफाई एंड करेक्ट मी एंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक। सीकिंग द ब्लेसिंग्स, आप सबके आशीर्वाद की याचना। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, very excellent class, thank you very much. An example of someone trying to make adjustment in the material world, but unable to do so.
Ek aisa udharan jis bhautik jagat mein adjustment karne ka prayas kar raha hai, parantu aisa kar nahi pa raha.
To trying to get happiness with money and fame.
Dhan aur yash se jo anand prapt karne ka prayas kar raha hai.
The singer Michael Jackson.
ऐसा सिंगर था माइकल जैक्सन।
He was born on a black body with a white nose.
उसका जो जन्म हुआ था वह काले शरीर में था जिसकी सफेद नाक थी।
But he wanted to be white. He didn't want to be black.
और वह सफेद होना चाहता था।
So he paid millions of dollars and they carved his nose to make his nose small.
तो उसने कई लाखों डॉलर खर्च किए और डॉक्टर ने उसकी जो नाक है उसको छोटा।
He bleached his skin to make his skin white color.
उसने अपनी जो skin था उसको bleach किया जिससे उसका सफेद बन जाए।
Well, he was never happy. Multi-millionaire, a very talented man, no doubt about it.
वो बहुत ही talented व्यक्ति था। कई लाखों डॉलर उसके पास थे, परंतु कभी खुश नहीं था।
A multi-millionaire.
कई लाखों डॉलर कमाए।
He was never happy.
जो कभी खुश नहीं था।
It is said that he cried himself to sleep every night.
और ये बताया जाता है कि हमेशा सोते समय रोया करता था।
And he died with all this money and no happiness. What was the use of it? Oh, so famous, so much money, and he died completely miserable, lonely.
और उसकी जो मृत्यु हो गई, उसके पास इतना धन था, इतना यश था, परंतु वह बिल्कुल अकेला और उसका मृत्यु हो गई।
So these are justice. Trying to make these adjustments in material world, it cannot help us.
तो किसी भी प्रकार का adjustment इस भौतिक जगत में हमारी सहायता नहीं कर सकता।
Thank you.
Most perfect apt example for this verse. बहुत सुंदर उदाहरण महाराज जी ने दिया किस प्रकार से कोई भी भौतिक adjustment इस को नहीं कर सकता, हम लोग बदल नहीं सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।
इस ग्रंथ ब्रजचंद्र प्रभु की।